بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے. بہت سے ایسے شرعی سوالات جن کے جوابات, جن کا علم ہم جاننا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ سوال کے ذریعے سے اس کا جو جواب جو مفتی صاحب عطا فرمائیں گے تو یوں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا, اور بہت سے ایسے ضروری اور اہم سوالات جن کے جوابات اس پروگرام میں ہمیں انشاءاللہ مل جاتے ہیں. تو اول تاخر ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ آج مہمان مفتی محمد سجاد عطاری صاحب ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ پاک کا کرم,
ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ٹھیکے پر زمین دینا کیسا؟
جی ٹھیکے پر زمین دینا, عام طور پر عشر کا بھی سوال اس میں اٹیچ ہوتا ہے, اور ہمارے بطور خاص لوگ عشر بھی نکالتے ہیں, اور زمینی فصل کی زکات جو ادا کی جاتی ہے. پہلا سوال تو یہی کہ ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے. دوسرا میرا اس کے ساتھ سوال یہ ہوگا کہ عشر کس پر ہوگا زکات کے طور پر, ٹھیکے پر دینے والا یا اس میں فصل اگانے والا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیکے پر زمین دینا جائز ہے, یہ کرائے پر زمین دینا ہے.
صحیح.
اور اس کا عشر کاشتکار پر ہوگا, یعنی جو زمین کی کاشتکاری کر رہا ہے, جو ٹھیکے پر لے رہا ہے, اس پر اس کا عشر ہوگا.
صحیح.
اور جو مالک زمین ہے اس پر عشر نہیں ہے, کیونکہ وہ کاشتکار ہی نہیں ہے, اس نے زمین کرائے پر دی ہوئی ہے, اور کرائے سے جو ان کو آمدنی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے یا اس کو ساتھ ملا کر اگر یہ صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی, ورنہ اس حاصل ہونے والی رقم یا ٹھیکے کے طور پر حاصل ہونے والی فصل پر کوئی عشر نہیں ہوگا.
ٹھیک, یعنی اس پر عشر نہیں ہے, البتہ وہ رقم جمع ہو رہی تو زکوٰۃ کے احکامات آئیں گے اس کو.
وہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور یہ رقم ان کے پاس آ گئی اور ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت بھی آ گیا, رقم یہ موجود ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے, یا اسی رقم کی وجہ سے ہی یہ صاحب نصاب ہو گئے تو پھر جو دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں کہ نصاب پر سال گزرے اور پھر سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان پر لازم ہو,
اور اگر پہلے سے سال چلتا ہوا آ رہا ہے تو پھر یہ اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا.
جی, اگر پہلے سے یہ صاحب نصاب ہیں اور یہ رقم بھی آ گئی ہے اور بالفرض دوسرے دن ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
صحیح.
تو اب اس رقم کو بھی یہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار کریں گے, یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے.
یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی دس دن پہلے آئی, دو دن پہلے آئی.
جو شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے پاس نصاب کے آخری دن بلکہ آخری لمحات میں بھی رقم آ جاتی ہے تو وہ رقم بھی اسی نصاب میں شمار ہو جاتی ہے, اس رقم کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے.
ٹھیک.
نصاب پر سال گزرنا شرط ہے, تو جو ادائیگی یعنی جو زکوٰۃ فرض ہونے کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی رقم آئے گی وہ اسی نصاب کے ساتھ ہی کاؤنٹ کی جائے گی.
جی, کئی افراد ہیں جو اس طرح کی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ 20 لاکھ تو ابھی آیا ہے, یہ 10 لاکھ ابھی آیا ہے, 5 لاکھ ابھی آیا ہے, یہ تو ہم ساتھ اس کو نہیں ملانا چاہیے یا اس پر سال نہیں گزرنا. تو جواب آپ کو اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ اب صاحب نصاب ہے تو اب اس کے اندر کوئی الگ سے اس کا سال شمار نہیں ہوتا, ورنہ سال کے اندر تو بہت سا پیسہ ایسا ہے جو آپ نے خرچ کیا, جو آپ نے کہیں لگا دیا, कोई आपने रहने का मकान लिया, आपने उसमें पैसा लाखों लाख लगा दिए, आपने गाड़ी खरीद ली उसमें आपने लगा दिए, दीगर और अपनी जरूरियात में खर्च किया, तो शरीयत आपसे ये भी तो मुतालबा नहीं कर रही कि जो लाखों से फायदा उठाया है उसकी भी आप जकात अदा करो। नहीं, खर्च हो गया सो हो गया। अगर आपने ऐसी जगह खर्च किया है कि जिससे कोई अमवाले जकात में से कोई चीज आपने नहीं ली, तो फिर उसका कोई एतबार नहीं, वो खर्च हुआ तो बस खत्म हो गया। तो जैसे हम ये लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, उसका कोई हिसाब आखिरी वक्त नहीं करते, तो यूं ये मसला भी हमें अच्छी तरह जहन नशीन हो जाना चाहिए कि अगर निसाब पहले से ही चलता हुआ रहा है, अब कोई रकम ऐड हुई तो वो उसके साथ ही जम कर दी जाएगी, मिला दी जाएगी, और मजमूई जो रकम होगी उस पर आप 2.5% जकात को अदा करेंगे। और ये जो ठेके का मसला है, इस तरह कई किराए वाले और भी लोग पूछते रहते हैं, कई लोग सजा सा पूछते हैं, मकान किराए पे दिया हुआ है तो मकान की मालियत पर वो जकात बनती है या किराए पर बनती है, दुकान दी हुई है, गाड़ियां भी लोग किराए पर देते हैं तो इसका भी पूछते हैं। अच्छा, कई ऐसे अफराद हैं जिनको किराए पे दुकान तो दी हुई है लेकिन किराया आया खा लिया, वो भी घर के अंदर, घर के अखराजात में एक बने हुए हैं कि भाई 20,000 किराया आएगा, ये बच्चों की फीस में जाएगा, ये फला खर्च हो जाएगा। तो अब ऐसे शख्स को क्या पूरे साल के किराए को शुमार करके जकात देनी होगी या क्या?
पहली बात तो ये है कि जो चीज किराए पर दी हुई है उस पर जकात नहीं होगी,
चीज पर जकात नहीं,
चीज पर जकात नहीं होगी, चाहे वो मकान है, दुकान है या गाड़ी है। और दूसरी बात ये है कि उससे जो आमदनी हासिल हुई, यानी जो किराया हासिल हुआ है, उस पर जकात उसी सूरत में होगी जबकि उसने इसको खर्च ना किया हो, ये पहले से साहिब निसाब हो, अब ये किराया भी आ गया और रखा हुआ है और साल मुकम्मल हुआ, तो अब जो निसाब की जकात अदा कर रहा है उसमें इसको भी शामिल करें।
ठीक।
या फिर ये हो सकता है कि इसी किराए के आने की वजह से ये साहिब निसाब हो गया, तो अब ये साहिब निसाब हो गया, अब इसके ऊपर साल गुजरना शर्त होगा। तो खुलासा ये है कि पहले से साहिब निसाब है और रकम इसके पास रखी हुई है, खर्च नहीं की है, तो इस रकम की भी जकात अदा करेगा साल मुकम्मल होने पर। और अगर पहले से साहिब निसाब नहीं है और इस रकम के, इस किराए के आने की वजह से साहिब निसाब हो गया, तो जिस वक्त साहिब निसाब हुआ तो उस वक्त से इनका साल शुरू हुआ, फिर जब यही वक्त यही दिन आएगा तो फिर उस वक्त देखेंगे कि अगर साहिब निसाब होगा तो जकात अदा करेगा, वरना जकात नहीं होगी।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
माशाल्लाह, प्रोग्राम दारुलसुन्नत जारी वसारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि क्या म्यूजिक, ढोल, दफ ये कुरान हदीस के अंदर कोई नाजायज है?
जी, म्यूजिकल आलात और म्यूजिक वगैरह ये कहाँ से मना है?
अल्लाह पाक ने इंसान को खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया और खेल कूद में मशगूल होने के लिए भी पैदा नहीं फरमाया है। और ऐसे तमाम आलात के जो खेल कूद, तमाशे और वक्त बर्बाद करने के लिए हैं, वो नाजायज है। जहाँ तक म्यूजिक और मौसीकी के आलात हैं तो इसके बारे में तो खास हदीस पाक में वईदें भी आई हैं कि जो इस तरह की गाने वाली आवाज या लहव लाभ की या मजामीर की आवाज सुनेगा तो उसके कान में सीसा डाल दिया जाएगा, पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। तो ये वईद आई है इन्हीं चीजों को सुनने के लिए। तो ये जितने भी इन्होंने जिक्र किए, ढोल, बाजे और इसके अलावा दीगर चीजें, तो ये सारी उन्हीं चीजों में शामिल हैं कि जिसको कुरान में भी मना किया गया, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये लहव लाइब की चीजें खरीदने और बेचने का जो है वो, इसकी मुजम्मत बयान की है।
जी हाँ, कुरान पाक में है ना, वामिन नासी मैं यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म। और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं, कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं, लियुदिल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, बगैर समझे लोगों को अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रास्ते से बहका दें। وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا और वो इसको हंसी मजाक बना लें। أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, उनके लिए जिल्लत वाला अजाब है, जिल्लत वाला अजाब है, اور یہاں لہو الحدیث سے جو مراد وہ ایسے تمام فضول اور لہو کام بھی، اور اسی کے اندر موسیقی، آلات موسیقی، گانے باجے، گانے گانے والے، گانے والیاں، یہ تمام اس میں شامل، اور ایسی محفل جمانے والے، رقص کرنے والے، وہ بھی سب اسی آیت مبارکہ کے تحت ان کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ سجاد صاحب، یہ جو آیت مبارکہ جب اتری تھی تو یہ ایک شیطانی ایسا کام تھا جو کفار نے شروع کیا تھا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے، اور دوسری طرف یہ گانے باجے والے اور یہ موسیقی آلات یہ کھڑے کر دیے گئے، اور ایک اس طرح کی محفل جمانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ آئی، وامن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ یہ جو یہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کس لیے؟ یہ لہو الحدیث والی یہ چیزیں، یہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، یہ بہکاوے میں ڈال دیں، ان کو گمراہ کر دیں، اس نیکی والے راستے سے پھسلا دیں۔ تو جو لوگ مجمع کے لیے، بعض تاجر آتے تھے، بڑے بڑے تجارتی قافلے بھی آتے تھے، جب ان کو کوئی ایمان کی، اسلام کی دعوت دی جاتی تو دوسری طرف یہ لوگ ایسے مجمع لگا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں چہرے مسخ ہونا، پتھر برسنا، یہ بھی ہوگا اس امت میں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب شراب سرعام ہوگی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، گانے والیاں ہوں گی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا۔ امت کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، وعید یہ بیان کی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اپنے آپ سے، آج کہا جاتا ہے موسیقی اس کو سجا سب روح کی غذا بنا لیا، یعنی بعض لوگ اس کو یہ تعبیر کر دیتے، یہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، تو کیا سکون اس میوزیکل معاملات میں ہے یا سکون کسی اور چیز میں؟
دیکھیں، جیسا دل ہوگا اس کا ویسا سکون ہوگا، تو جس کا دل انہی لہو و لعب والی چیزوں سے سکون پاتا ہے تو بظاہر ان کو انہی چیزوں سے سکون آتا ہے، لیکن یہ چیزیں سکون کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو جن کے دل اللہ پاک کی یاد سے معمور ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور جن کے دل نیکیوں اور عبادتوں کی طرف راغب ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ پاک کے ذکر سے، عبادت سے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے سے۔
جی، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا زمینی فصلوں میں بھی حلال و حرام کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟
زمینی فصلوں میں بھی، یعنی عام طور پر جانوروں میں تو ہوتا ہے، زمینی فصلوں میں بھی کوئی حلال حرام کا ہے؟
زمینی فصلوں میں تو جس کا کھانا جائز ہے وہ جائز ہے، حلال و حرام اس اعتبار سے کنسیپٹ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی فصل جو ہے وہ چوری کر کے، غصب کر کے لے لی، تو ظاہر ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یوں تو جو ہے وہ حرام ہے، اور بقیہ کوئی حلال و حرام کا اس میں کنسیپٹ نہیں ہے۔
یعنی فصلوں کے اعتبار سے اس میں نہیں ہے اس طرح کا کوئی؟
جی، فصلوں،
یعنی یہ خارجی وجہ ہے نا، یہ تو آپ چاہے فصل کے ساتھ نہ بھی ہو، کسی کا پیسہ کسی نے پکڑ لیا، کوئی اور کوئی لوٹ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ فصلوں میں باقاعدہ کوئی اس طرح کا حلال حرام کا تصور نہیں؟
اس میں مختلف نوعیتیں، اگر ہم اس کو مزید اس کو واضح کریں تو مختلف فصلیں مختلف ہوتی ہیں، بعض نشے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب وہ نشہ کے جو نشہ کرنا ہی حرام ہے تو اس کا استعمال بھی حرام ہوا، تو اس اعتبار سے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ اور بقیہ یوں اگر کہیں کہ کوئی فصل ہوئی اس کا استعمال کرنا حرام ہے،
ایسا نہیں،
ایسا نہیں ہے، فی نفس ہی وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ چیز ہے، اس کا خارجی استعمال کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے تو اس کا حلال حرام ہو سکتا ہے، لیکن فی نفس ہی، جیسے یوں ہے نا کہ کتا جو ہے وہ حرام ہے، या गदा हराम है, तो इसी तरह कोई ऐसी फसल हो कि जो हराम हो, तो इस तरह का कोई कंसेप्ट फसलों में नहीं
है। ठीक है, मैसेज के जरिए भी जो सवाल आता है वो शामिल करते हैं। नाबीना अफराद पर जक़ात वाजिब होती है कि नहीं होती?
जक़ात का दारो मदार जो है वो देखने और ना देखने पर, यानी बिनाई या बिनाई से महरूमी पर नहीं है, बल्कि शरीयत ने इसके लिए निसाब मुकरर किया है। आकिल बालिग मुसलमान जो साहिब निसाब है, चाहे वो नाबीना हो चाहे वो बीना हो, तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज होगी।
यानी दूसरी शरात देखी जाएंगी, ये उसमें नहीं है
जी, ये नहीं।
ठीक है, ये ज़ाहिर है कई ऐसे माजूर भी तो होते हैं। अब हमारे यहाँ बाज़ुकत किसी को माजूर है, वो अपनी मजूरी से फायदा उठाते हुए लोगों को मांगता है और लोग भी उसे भी मांगते हैं या पेशा ही इख्तियार करते हैं, लोग भी उसे देते हैं कि ये माजूर है। हालांकि माजूर भी है, हो सकता है वो इतना सहबियत है कि उसके ऊपर खुद ज़कात बनती हो। इसी तरह बेवा औरत के हवाले से मुतलकन लोगों का ज़हन बना हुआ कि बेवा है तो बेवा को ज़कात दे दो। हर बेवा के लिए नहीं है, बेवा भी अगर खुद साहिब निसाब है, ज़कात के अमवाल या सोना चांदी करेंसी किसी तरह भी उसके पास ये मौजूद है कि वो निसाब को पहुंचे, तो वो बेवा तो ज़कात अदा करेगी, वो अदा करेगी, ना कि ये कि वो लोगों की ज़कातें वसूल करें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें पूछ लेनी चाहिए। हो सकता है बाद का आदमी इससे गलतफहमी का शिकार हो जाए। तो नबीना कई ऐसे अफराद होंगे जो करोड़ों पति होंगे, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास क्या क्या कुछ होगा, तो उसको देख के नाबीना होने की वजह से ये नहीं कहेंगे कि उस पर ज़कात लाजिम नहीं है, ज़कात लाजिम होती रहेगी। साल ब साल साहिब निसाब पर शरायत के साथ उस पर भी ज़कात लाजिम होती रहेगी। कुछ ऐसे में समझी शामिल करते हैं। बच्चों की शादी पे कमेटी निकली थी इनकी 3 लाख रुपए की, और 4 महीने पहले ये निकल चुकी है। 20,000 रुपए ये देते हैं कमेटी की तौर पर, तो ज़कात लाजिम होगी और कितनी होगी?
बीसियों पर जो ज़कात का मसला है, पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने इतनी बीसियां जमा करवा दी कि जो निसाब की मकदार को पहुंच गई,
ठीक है,
तो अब ये साहिब निसाब हो गए।
अगर सिर्फ कमेटी को ही देखें,
अगर सिर्फ
और कोई अमाउंट नहीं है
जी, और अमाउंट नहीं है, सिर्फ यही बीसियां हैं, जो ही बीसियां निसाब की मकदार को पहुंची तो ये साहिब निसाब हो गए।
सही।
अब फिर बीसी में ये भी देखा जाता है कि बीसी सबसे आखिर में ली है या पहले वसूल कर ली है। अगर पहले वसूल कर ली है तो इनके ऊपर जो है वो खुद कर्जा हो गया, यानी जिन जो बीसियां अभी अदा करनी है वो लोगों का इन पर कर्ज है।
ठीक।
अब अगर वो कर्जा ही इतना है कि कर्जे को मैनेज करें तो निसाब भी बाकी नहीं रहता, तो ये साहिब निसाब ही नहीं बचे।
सही।
और अगर ये साहिब निसाब बीसियों से हो गए भरते भरते और फिर इनकी बीसी आखिर में खुली है, तो अब चूंकि ये साहिब निसाब पहले से हो चुके थे, तो जो ही निसाब मुकम्मल होने के बाद साल गुजरा तो इनके ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी है। अगर इनके ऊपर कोई कर्ज वगैरह नहीं है, यानी इतना कर्ज के जिससे निसाब ही ख़त्म हो जाए, अगर ऐसा कर्ज नहीं था तो साल गुजरते ही इन पर ज़कात फर्ज हो चुकी है। अब जो इनकी बीसी खुली है तो ये उसकी भी ज़कात अदा करेंगे, और जो पीछे अगर जो है वो गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा नहीं की तो उसकी भी ज़कात अदा करेंगे।
सही। यानी इसमें यही तफसील है, अभी कमेटी निकल चुकी और कमेटी नहीं निकली। आप दोनों एतबार से नाज़रीन किराम इस मसले को देख लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिन लाखों लाखों रुपए की, मिसाल के तौर पर 5 लाख की कमेटी निकल आई, अब उसने अभी तक जो भरे थे वो 40,000 भरे और 5 लाख निकल आए, तो यूं ये 4,60,000 रुपए का मकरूज हो गया, यानी इसने अब लोगों के भरने हैं कमेटियां। तो ये जो 5 लाख एक साथ आई हैं, 5 लाख का अमाउंट एक साथ आया, तो ये 5 लाख की ज़कात अदा नहीं करेगा। अगर दूसरे के साथ मिलकर भी इसका निसाब का वक्त भी आ चुका है, तो इसमें से जितनी कमेटियां इसने देनी है वो माइनस कर ले, वो माइनस कर ले, चाहे किसी की 2 लाख की कमेटियां माइनस बनती हैं, 2.5 लाख की बनती हैं, 3 लाख की बनती है, तो वो माइनस करता जाए। मसला उसका ज्यादा है कि जो कमेटियां भर रहा है, कमेटी निकली नहीं है। अब किसी के 2 लाख कमेटियों की तरफ चले गए, 3 लाख चले गए, 4 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, तो ये साल ब साल अपना इसका हिसाब करके इसको अपने अमाउंट में प्लस करें और इसकी जकात अदा करता रहे। अगरचे जो पैसा किसी से लेना है तो उसमें ये वसत है कि वो कब उसको इख्तियार है कि कब जब मिल जाए या पांचवा हिस्सा निसाब का मिल जाए तो जकात अदा करें, लेकिन एक आसान हिसाब किताब करते हुए हर साल जितना इसका अमाउंट जमा हो रहा है और जितना कमेटियों में ये भर चुके हैं इन सब का वो शुमार करके ये अपनी जकातें अदा करता रहे। जिनकी कमेटियां निकल चुकी हैं तो वो उनके हाथ में आ गई हैं, जितना पैसा उन्होंने अब लौटाना है भरना है आगे कमेटियों का तो वो उसमें से माइनस करके बकिया रकम से अपनी जकात का हिसाब किताब बनाएंगे। जी मजीद सवाल।
हमारे यहाँ ना मशहूर है कि अगर कोई औरत हो, वो माँ हो या बेटी हो, ठीक है, अगर उसकी उसका हो गया इंतकाल तो उसे खफन जो है वो उसके जो माँ बाप है पीछे से वो आकर देंगे, खावन नहीं दे सकता, बेटर ही दे सकता। और दूसरा है कि जो पहला वो खाना जो होता है ना, मतलब कि जनाजे से फारिग होके, वो भी कहते हैं कि जो माँ बाप है उसके वो आकर देंगे, बेटा या खावन नहीं दे सकता। इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाना है कि ठीक है या लोगों ने ऐसी बातें
जी यानी बातें भी ऐसी बनाई हुई हैं और वो भी दूसरों पे लाजिम की हुई हैं कि ये हम नहीं कर सकते या करेंगे नहीं, ये वो करेगा। बहरहाल शरी मसला क्या है?
शरी मसला ये है कि किसी का कफन किसी पर यूं लाजिम नहीं है कि ये बेटा देगा या शोहर देगा या भाई देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि शरीयत ने तो ये हुक्म दिया है कि जो इंतकाल करने वाला है अगर उसका कोई तरका मौजूद है, यानी उसने अगर अपने पीछे कोई रकम पैसा वगैरह छोड़ा है, तो सबसे पहले उसकी तजहीज़ो तकफीन के यानी उसके कफन दफन के जो अखराजात हैं वो उसके तरके से निकाले जाएंगे, वो ले लिए जाएंगे, जितना खर्च होगा वो उतना उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। हाँ, अगर कोई वारिस या गैर वारिस अपने तौर पर देना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी पर खास लाजिम कर देना कि यही देगा तो ऐसा नहीं। हाँ, अगर औरत का इंतकाल हुआ है तो उसके कफन दफन के तमाम अखराजात जो है वो उसके शोहर पर लाजिम है,
उसके शोहर पर लाजिम
है। इसी तरह अगर किसी मैयत का तरका है ही नहीं तो फिर जिन पर नफका वाजिब है तो उन पर कफन दफन के अखराजात भी लाजिम है।
लाजिम
तो अब अगर जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन पर लाजिम है, अगर वो उनके उन वरसा में शामिल हैं कि जिन पर मैयत का नफका वगैरह लाजिम है और मैयत का अपना माल भी नहीं है, तो इस सूरत में फिर उन पर लाजिम होगा कि वो कफन दफन के तमाम इंतजामात अंजाम दें।
अब ये तो ये कह रहे हैं ना, अब जैसे शोहर को नहीं करने देंगे तो वो कहेंगे कि ये आमतौर पर मशहूर बीमार है कि औरत फौत होगी तो मेके से कफन आएगा। कभी लड़ाई भी होती ना तो वो औरत भी अपने मेके भाइयों को ये कहती कि कफन भी मैं आपसे नहीं लूंगी। तो ये एक मतलब आम रस्म और रवाज के तौर पर इसको कहें तो शरी तौर पर अगर यूं लाजिम किसी पर ना करते हो और ना देने पर तानो तशनी ना करते हो तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं।
बात यही आएगी कि अगर और किसी भी औरत का कफन उसके मेके पर लाजिम कर दिया, यानी समझ ही ये रहे हैं कि भाई ये देंगे, किसी और का देना जायज ही नहीं है, तो ये इस तरह के जितने रस्म और रिवाज हैं कि जिसमें शरी मसले को ही गलत बयान किया जा रहा है, जिस पर वाजिब है उस पर नहीं बल्कि किसी और पर वाजिब जो है वो करार दिया जा रहा है, तो ये रस्म और रिवाज गलत है और इस तरह की सोच भी गलत है। बल्कि इसको यूं बयान कर दिया जाए जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लाजिम नहीं समझते हैं, मेके की तरफ से आ गया तो शोहर को भी चाहिए कि इजाजत दे दे कि आमतौर पर ये उसके घर वालों के लिए खुशी का बायस इस इतबार से होती है कि चलो औरत की ख्वाहिश भी थी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल कर दिया। लेकिन अगर शोहर कफन दफन का इंतजाम कर रहा है उसको रोक दिया गया तो ये फितने और इंतशार का भी बायस है और ये एक शरी जो तकाजा है शोहर उसको पूरा कर रहा है और उसमें रुकावट बनना है, ये शर्म
उसके भी बरखिलाफ है। अच्छा, खाने का भी इन्होंने कहा कि वो भी मेके को ही कहते हैं, पहले दिन का खाना इंतकाल हुआ तो मेके की तरफ से ही खाना आएगा, ये और खाना आपको तो पता है दावत मैयत के तौर पे होता है कि कितने लोग हैं, सिर्फ अहले खाना के लिए खाना नहीं, वो सब के लिए खाना होता है।
पहली बात तो ये है कि अहले मैयत को किसी के खाने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई फलां का खाना आएगा, फलां का खाना आएगा। ये एक बुरी बात है कि ऐसे मौके के ऊपर जो है वो खाने के इंतजार में बैठे हैं और किसी के ऊपर खाना लाजिम करार दे रहे हैं। शरीयत ने करीबी रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला को हुक्म ये दिया है कि वो पहले दिन जिनके यहाँ मैयत है उनको खाना पेश करें, क्योंकि वो दुख रंज और तकलीफ की वजह से और मैयत के तजहीज़ो तकफीन के मामलात में मसरूफियत की वजह से खाना नहीं पका सकते और ना ही खाना पकाने का आमतौर पर मौका होता है। तो इसलिए शरीयत ने इनकी पहले दिन की खैरखाई करीबी रिश्तेदारों और अहले महल्ला को ताकीद की है कि वो इनकी खैरखाई करें, लेकिन इस खैरखाई को भी किसी के ऊपर लाजिम कर देना कि फलां की तरफ से है और इसके ऊपर झगड़े करना और इसके ऊपर बातें बनाना, ये अच्छा तर्ज अमल नहीं है और ये अच्छे मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये कोई शादी का खाना थोड़ी है कि जो है वो हम किसी के ऊपर लाजिम करें, किसी के घर से आने का इंतज़ार करें। तो इस तरह की बातों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये किसी पर भी लाजिम नहीं है। जो भी अहले मैयत की खैरखाई करेगा उनकी खैरखाई की नीयत से वो सवाब का हकदार होगा।
जी कुछ SMS भी शामिल करते हैं। क्या औरत मेकअप कर सकती है?
औरत का अपने शौहर के लिए मेकअप करना बिला शुबा जायज़ है, बल्कि अगर वो हुक्म देता है तो औरत पर लाजिम है कि वो उसके लिए बनाओ सिंगार करे। इसी तरह अपने महारिम के सामने भी जायज़ बनाओ सिंगार और जायज़ मेकअप करने में शरण कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता गैर महारिम को दिखाने के लिए मेकअप करना भी जायज़ नहीं है और गैर महरम के सामने बेपर्दा आना भी जायज़ नहीं।
ठीक है, और इसमें मेकअप की ज़ाहिर है वही कयूदात तमाम रहेंगी कि जो जायज़ तरीके से मेकअप हो, यानी अब आईब्रो को जिस तरह वो खूबसूरत बनने के लिए बनाया जाता है और दीगर ऐसी चीज़ें भी मेकअप के नाम पे शामिल हो गई, अपने बालों को छोटा करना, कुछ कंधों तक ले जाना, मर्दों की मुशाबत इख्तियार करना, ऐसी तमाम चीज़ें जो मेकअप के नाम पे हो रही हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है।
ज़ाहिर है कि जो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में शामिल हैं और जो नाजायज़ बातें हैं उसका हुक्म अगर शोहर भी दे, वालिद भी दे, कोई भी दे, तो उसके हुक्म पर अमल करना जायज़ नहीं है। यानी एक तरफ अल्लाह पाक की नाफरमानी है और एक तरफ शोहर का हुक्म है, तो शोहर के हुक्म के मुकाबले में अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म यकीनन फौकियत रखता है। तो अल्लाह पाक ने जिस चीज़ से मना फरमाया है उसका अगर शोहर भी हुक्म दे तो उसका करना जायज़ नहीं होगा। शरीयत तौर पर जो भी नाजायज़ मेकअप है या नाजायज़ बनाओ सिंगार है तो वो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं।
ठीक है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से एक किताब बकायदा शाये हुई है, जीनत के शरी आहकाम। जेब जीनत लिबास के एतबार से भी हो सकती है, जिस्मानी तौर पर भी, जैसे यही मेकअप और बनाओ सिंगार इख्तियार करना। मर्दों के लिए भी कई तरह की जीनत जिसकी शरण इजाजत नहीं, इसी तरह औरतों के भी कई ऐसे अहकाम हैं। तो जीनत के शरी अहकाम पर ये मुश्तमिल किताब है, मकतबतुल मदीना से भी ये किताब आप हासिल कर सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट पर भी ये बकायदा किताब, ये किताब बकायदा अपलोड है, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं और इसका मुताला भी फरमाइए। लोधना से सवाल है कि कसर नमाज के हवाले से, अगर दूसरे शहर में शादी हुई है और आप मेके जाएं हफ्ते के लिए जाएं, तो कसर नमाज वाजिब होगी या मुकम्मल नमाज पढ़नी?
अगर किसी ऐसे शहर में शादी हुई है जो मुसाफत सफ़र पर है, यानी 92 किलोमीटर से ज़्यादा फासला बनता है, और औरत वहाँ पर ब्याह कर गई है, तो अब उसका वही वतन असली है। अब अगर ये अपने मेके में आती है, 15 दिन से कम उसका क्याम है, तो ये यहाँ पर कसर करेगी, क्योंकि जब इसने यहाँ से अपनी सकूनत यानी रिहायश छोड़ दी है और अपने ससुराल में चली गई है, तो अब ये जो मेका है ये इसका वतन असली ना रहा, इसका वतन असली इसका ससुराल है। लिहाजा जब भी यहाँ पर एक हफ्ते के लिए, दो चार दिन के लिए, यानी 15 दिन से कम के लिए आएगी तो यहाँ पर कसर करेगी।
जी नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, आपने हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। दारुल ताले सुन्नत से मरबूत रहें। दारुल ताले सुन्नत का मेल एड्रेस भी अपने पास रखें, ईमेल के जरिए भी आप शरी मसाइल पूछ सकते हैं, और बतौर ख़ास जो बैरून मुल्क हैं वो दारुल ताले सुन्नत से व्हाट्सअप के ज़रिए भी शरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन सीखने वाला बनाए, और जो कुछ इल्म की बातें सीखे मौला कायनात मुझे आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जाहि नबी जलमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।